सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक प्रश्न से। क्या प्रश्न है उसका? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अगर आप ये सोचते हो समझते हो, आपकी अगर ये मत है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मेरे को आप कर्म करने को क्यों बोलते हो? कौन सा कर्म? घोर कर्म। घोर कर्म क्या है? युद्ध करने को कहते हो आप। ज्ञान के अंदर तो युद्ध नहीं करना पड़ता है, और आपने दूसरे अध्याय में ज्ञान की और कर्म की दोनों की प्रशंसा की है। अगर आपके हिसाब से, आपके मत में ज्ञान अगर श्रेष्ठ है, तो मेरे को कर्म क्यों करने को कह रहे हो? ब्राह्मिश्रेण वाक्यन बुद्धि मोयसी में तदेकम बद निश्चित ये न हम आप नुयाम। मेरे को एक बताओ, आपने दोनों के बारे में प्रशंसा की, मेरी बुद्धि अब मोहित सी हो गई है, समझ में नहीं आता है कौन सा करें। हमको तो अच्छा तो ज्ञान लगता है, काम नहीं करना हो, खाली ज्ञान मिल जाए, उससे मुक्ति हो जाए, आनंद प्राप्ति हो जाए, तो फिर इससे बढ़िया की चीज क्या हो सकती है? सबको यही चाहते हैं। बोले एक बताओ मेरे को, तद एकम बद निश्चित, निश्चित रूप से एक बताओ। और भगवान ने बता भी दिया तुमको क्या करना है। आगे जाके आपने सुना होगा नियतम कुरु कर्मा, ये एक चीज उनको बता दी, ये करना है आपको। फिर भगवान कहते हैं कि ये तो दोनों चीजें हमने आगे से बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि अभी आज हमने बनाया है। कर्म योग और ज्ञान योग सृष्टि के शुरू में भी किया था। सृष्टि के शुरू में जितने भी प्रजापति थे, ब्रह्मा थे, उन सबको हमने कहा कर्मयोग करो। अब वो सब कर रहे हैं कर्मयोग। और सनक सनंदन इनको कहा ज्ञान योग, आप लोग ज्ञान योग का प्रचार करो, उन्होंने ज्ञान योग शुरू कर दिया। उसके बाद में भगवान कहते हैं न कर्मणा अनारंभा नैष्कर्म पुरुष अस्मृति। कोई आदमी ये सोचे नैष्कर्म क्या है? अच्छा आज आप लोग की परीक्षा लें क्या? व्हाट इज नैष्कर्म? हमने कई बार बताया आपको नैष्कर्म क्या है, बताओ आज।
सिद्धि,
नैष्कर्म सिद्धि, ये एक ग्रंथ का नाम है नैष्कर्म सिद्धि। और नैष्कर्म कहते किसको है? नैष्कर्म, चलो आप देख लो अपने, एक्शनलेसनेस, ये तो उसका वर्ड मीनिंग हुआ, एकदम सही बात है, एक्शनलेसनेस। तो भगवान यहां कहते हैं न कर्मणा अनारंभात, आपने कर्म नहीं किया, शुरू ही नहीं किया, तो उसे क्या आपको एक्शनलेसनेस मिल जाएगा? और न च संन्यासना एव सिद्धिम समधिगच्छति, आप काम कर रहे हो करते करते छोड़ दिया, तो क्या आप एक्शनलेस हो जाओगे? भगवान कहते हैं एक्शनलेसनेस वैसे नहीं होता है। कैसे होगा? आपको अनर्थकारी परंपरा याद है? व्हाट इज अनर्थकारी परंपरा? ये वर्ड सुना आपने? अविद्या काम कर्म। तो कर्म क्या आता है? एक्शन। एक्शन कैसे आता है? काम से आता है, डिजायर से आता है। डिजायर कैसे आती है? अविद्या से आती है। अविद्या क्या है? ये साइंस इसको पकड़ लो। अविद्या क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना अविद्या है। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे उस दिन हम विद्वान हो जाएंगे, रियलाइज मास्टर हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। तो हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम ब्रह्म हैं, हम आनंद स्वरूप हैं। हमको ये पता नहीं है कि हम आनंद स्वरूप ब्रह्म हैं, ये हमको नहीं पता है। हम अपने को क्या समझते हैं? हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। हम कंप्लीट हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, मगर हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। हम सोचते हैं कुछ और मिल जाए तो हम कंप्लीट होंगे। इतने पैसे मिल जाए, ऐसे व्यक्ति मिल जाए, ऐसा ये मिल जाए, वो मिल जाए, कंप्लीट करने की चेष्टा हम करते हैं अपने आप को, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो फिर कामना आ गई। कामना को फुलफिल करने के लिए कर्म करना होगा। तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक कर्म लगा रहेगा, ये समझ के रख लो अच्छी तरह से। एक्शनलेसनेस नहीं होगा। कब होगा एक्शनलेसनेस? जब आप डिजायरलेस हो जाओगे, जब आप वासना लेस हो जाओगे। वासना से मतलब अविद्या रहित हो जाओगे, मतलब आपको विद्या मिल गई। जब विद्या मिल गई, आप ज्ञानी बन गए, अब आपके अंदर आपको पता लग गया कि हम आनंद स्वरूप है, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अब दुनिया की कोई वस्तु मेरे को आनंदित नहीं कर सकती। हमको दुनिया से इतना ही लेना है जितना मेरे को शरीर रखने के लिए चाहिए, बस। तब आप नैष्कर्म हो गए। नैष्कर्म का मतलब सीधा मतलब हो गया ज्ञानी। ज्ञानी बन जाओगे तो नैष्कर्म हो जाएगा, एक्शनलेसनेस आ जाएगा। जब तक आप ज्ञानी नहीं हो तब तक नैष्कर्म नहीं होगा, तब तक कभी नहीं होगा। तो काम नहीं करने से अविद्या तो नहीं खत्म हो जाएगी। हमने काम करना बंद कर दिया, आपने कल से बोला हम ऑफिस नहीं जाएंगे, अब हम नैष्कर्म हो गए, ज्ञानी हो गए, हो जाएगा? नहीं होगा। और या काम कर रहे हो, 5 बजे तक ड्यूटी है, 2 बजे छोड़ छाड़ के आ गए, कर रहे तो छोड़ दिया, क्यों भाई छोड़ दिया? ज्ञानी हो गया। होगा? नहीं होगा। ये है नैष्कर्म सिद्धि, याद रखना। नहीं समझ में आया तो अभी बोलो, अगली बार फिर हम पकड़ेंगे। बोलता है कर्म को छोड़ देने से या कर्म को आरंभ नहीं करने से नैष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती है। फिर भगवान कहते हैं कि आप एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। आपने अगर हाथ पांव बांध लिए, कुछ नहीं कर्म करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। मन को कैसे रोकोगे? मन तो चलता रहता है। आप श्वास को कैसे रोकोगे? श्वास को नहीं रोक सकते आप, कर्म चलता रहता है। कैसे होता है? बोले प्रकृति के गुण जो है ना आपसे करवा लेंगे, कर्म आपको करना ही होगा। फिर भगवान कहते हैं कि एक आदमी है, वो मिथ्याचारी है। कैसा मिथ्याचारी है? उसने क्या किया? कर्मेंद्रियानि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण, उसने कर्मेंद्रियों को रोक लिया। कर्मेंद्रिया मतलब हाथ पांव मौन हो गया, मगर माइंड माइंड चल रहा है। मनसा स्मरण इंद्रियार्थ इंद्रिय अर्थन विमुणात्मा मिथ्याचार से उच्यते। क्या सोच रहा है? इंद्रियों के विषय सोच रहा है। उसने काम बाहर से बंद कर दिया। लोग सोचते हैं कि भाई अब ये बहुत देवता आदमी हो गया है, कुछ काम हम नहीं करता है, मगर मन ही मन में इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारे हिसाब से केवल पांच ही विषय हैं, तो मन में पांच विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं वो आदमी क्या है, मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी है। तो सदाचारी कौन है, भगवान को बताना होगा ना, इमीडिएटली बताना होगा, हु इज सदाचारी। तो भगवान सदाचारी के बारे में बताते हैं, यस्तु इंद्रियानि मनसा नियम्या रवते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। जिसने अपने इंद्रियों को और मन को नियम में कंट्रोल कर लिया और कर्मेंद्रियों को कर्म योग में लगा दिया। देखो आप बिना कर्म के रह नहीं सकते, कर्म आपको करना ही होगा। कैसे कर्म करें, बोले कर्म योग करना होगा। अभी जो हम कर्म करते हैं ना वो योग नहीं है, अभी जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमको परमात्मा नहीं मिलेंगे। जितने भी हम साकाम कर करते हैं उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म योग करें और असक्त अनअटैच्ड, भगवान कहते हैं सब विशिष्यते, वो सदाचारी है, वो सदाचारी। अब भगवान कहते हैं क्या करना होगा तुमको अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम हे अर्जुन नियतम कुरु कर्म, कुरु मीन्स इट इज आदेश, इट्स एन ऑर्डर, तुम करो, इट्स नॉट ए रिक्वेस्ट, करिए, ऐसा नहीं कहा, करो। नियतम कुरु कर्म, अर्जुन का प्रश्न था एक बताओ हमको क्या करें, भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म, करो। क्या करें, बोले अपने कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य कर्म क्या क्या है, उपासना, चार आपके ये कर्तव्य कर्म है, और इसके अलावा दो और है, काम्य और निषिद्ध। देखो काम्य और निषिद्ध कर्म अगर आप करते रहोगे तो कभी भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, गारंटेड है। और अगर आप कर्तव्य कर्म करते रहोगे, इन चारों को करते रहोगे जैसे भगवान कहते हैं वैसे करोगे, तो ये ज्ञान आपको मिलेगा। ये कर्म ज्ञान के विरोधी नहीं है, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ज्ञान के विरोधी हैं। ये दो चीज आप पकड़ के रख लो। छह किस्म के कर्म के अंदर काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ज्ञान के विरोधी हैं। ज्ञान के विरोधी मतलब अल्टीमेटली आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आप काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म करते जाओगे ज्ञान कभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं होगा, वासना बढ़ती जाएगी, आपकी वासना की कैपिटल बढ़ती जाएगी, और वासना की कैपिटल बढ़ती जाएगी तो आप अपने वासना के अनुसार काम करोगे। हर व्यक्ति अपने कर्म वासना के अनुसार करता है, तो जितनी वासना बढ़ती जाएगी उतना आप उसके हिसाब से कर्म करते रहोगे। और कर्तव्य कर्म करेंगे तो क्या होगा, बोले कर्तव्य कर्म अगर जैसे कहते हैं भगवान वैसे अगर करोगे तो उसके अंदर वासना का फॉर्मेशन नहीं होता है। वासना का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका मन, ये साइंस है। बहुत अच्छा, तो हमको अपने कर्तव्य कर्म कैसे करने हैं, बोले प्रेम से करो, आनंद से करो, उत्साह के साथ करो, अपने कर्तव्य कर्म करो। मगर कई बार क्या होता है ना कि वो आनंद की जगह लगता है क्या बंधन सा हो गया है। कर्तव्य कर्म के अंदर हमको जॉय मिलना चाहिए, मगर लगता है ये जॉब है, जबरदस्ती हम लोग सब जॉब में जाते हैं ना, कहते हैं कहां जा रहे हो, आज जॉब है, मन नहीं है, करना पड़ता है। मगर कर्तव्य कर्म जो आपको आनंद देना चाहिए तो नहीं होता। अब जैसे सवेरे उठने से आप पहले ही भगवान का नाम स्मरण करते हो, ओ गॉड गुड मॉर्निंग, ओ गुड मॉर्निंग गॉड। मगर अगर आपका मन नहीं अच्छा है तो क्या करोगे, उल्टा बोलोगे, गुड मॉर्निंग गॉड के बदले ओ गॉड मॉर्निंग गुड उल्टा कर दोगे, चलो मन नहीं है, तो हमको आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ करना पड़ता, करना चाहिए। देखो जब भी आप कोई भी कर्म किसी अपने से हायर अथॉरिटी के लिए, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अगर कर्म करते हो तो वो कर्म बांधता नहीं है, वो कर्म बंधन नहीं है। जब हम ऑफिस में काम करते हैं वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, हमको जैसा बॉस कहता है वैसा हम करते हैं, उसकी खुशी के लिए करते हैं। वो बोलता है खड़े रहो, खड़े होते हैं, बोलता है बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, उसमें हमारी खुशी नहीं है। जब भी हम कोई कर्म किसी हायर अथॉरिटी के लिए करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष के लिए करते हैं, तो उसकी वासना नहीं बनती है, उसकी वासना नहीं बनती है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ भगवान है, तो भगवान के लिए कर्म करो। आप जो कर्म करते हो उसके साथ में अगर भगवान को जोड़ दो, उसके साथ पूजा जोड़ दो, तो वो कर्म अब बांधेगा नहीं। और जो भी कर्म करते हैं बिना भगवान को जोड़े, बिना भगवान की पूजा किए, वो कर्म आपको बांधेगा। कर्म प्लस पूजा फ्रीडम, कर्म विदाउट पूजा बंधन। सिंपल सिंपल इक्वेशन है। तो कर्म प्लस पूजा क्या है? कर्म योग हम जो कहते हैं, पूजा क्या है? हमारे काम से भगवान खुश होंगे, यही बस इतना करना, ये भगवान की पूजा है। हमारे काम से हमारा बॉस खुश होगा, ये पूजा है बॉस की। हमारे काम से भगवान खुश होंगे, बस इतना ही करना है। तो सबसे पूजनीय भगवान है, इसलिए हम कर्म भगवान के लिए करें, तो वो कर्म हमको ज्ञान तक पहुंचा देगा, हमारी वासना क्षय होती जाएगी, मन शुद्ध होता जाएगा। जैसे ही मन शुद्ध होगा, ज्ञान के प्राप्ति के हम अधिकारी बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारी जिंदगी तक मन को शुद्ध करते नहीं रहना है। कपड़ा गंदा हो गया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, आधे घंटे में साफ होके आ गया, तो क्या फिर डालते हो उसको? क्या उसको वॉशिंग मशीन में सेकंड टाइम नहीं डालते ना? तो इसी तरह से कर्मयोग जिस दिन आपको रिजल्ट दे दे, कब देगा मालूम नहीं, जिस दिन दे दे उस दिन आपको कर्मयोग बंद कर देना, हो गया काम। अब क्या करना है? अब हमको आगे बढ़ना है। क्या चाहिए आगे? ज्ञान चाहिए। याद है आपको हमने बताया था कि कर्मयोग और ज्ञान योग एक ही मार्ग के दो हिस्से हैं। हम जहां पर खड़े हैं, अर्जुन जहां पर खड़ा है, उसको कर्मयोग से शुरू करना है। मन शुद्ध हो जाएगा फिर हम ज्ञान के लिए आगे बढ़ेंगे। बिना मन शुद्ध किए ज्ञान कभी बैठेगा नहीं। कर्मयोग आपको करना ही पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है, आप करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि भगवान ने तो आपको अधिकार दिया हुआ है, कर्म अन्य वाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल ह्यूमन बीइंग्स को ये अधिकार दिया गया है कर्म की छूट। आपकी मर्जी है सत्संग में आओ, आपकी मर्जी है मत आओ, भगवान नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं गए, नहीं कहेंगे। तो करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में है। इस जीवन में करो या अगला मनुष्य जीवन में अगर मिले तब करना। मालूम नहीं अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भी नहीं पता हमको। ठीक है, देखो हर कोई आदमी पूजा करता रहता है, हर आदमी पूजा करता है, कोई धन की पूजा करता है। और हमारे हिसाब से तो जितने भारतीय अमेरिका में आए हैं धन कमाने के लिए आए हैं, धन की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे धनी मैं हूं, मेरी पूजा क्यों नहीं करते, क्या तकलीफ है आपको, सारा धन तो मेरा है ना, सारी पृथ्वी मेरी है, मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो। कोई कहता है कि नहीं हमको तो सीनियर्स की जो एल्डर्स हैं उसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है भाई हम तो सीनियर मोस्ट हैं, भगवान कहते हैं हम सीनियर मोस्ट हैं, सबसे पहले हम ही थे उसके बाद फिर सबकी जन्म हुआ है, तो भगवान से सीनियर कोई है क्या, कोई नहीं है, तो भगवान की करो। कोई कहता है कि मुझे फेमस होना है, तो चलो भगवान से फेमस और कोई है, भगवान की पूजा करो। कोई कहता है मुझे खजाना चाहिए, भगवान कहते हैं मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ा खजाना है, मेरे पास आओ। कोई कहता है मेरे को टीचर बनना है, मैं जगत गुरु हूं, क्यों घूम रहे हो इधर उधर, किस यूनिवर्सिटी में घूम रहे हो, जगत गुरु के पास में आओ। तो हर किस्म से आपको जो है भगवान बोलते मेरे पास आओ, मेरे को मैनेजर बनना है, बहुत बढ़िया है, मेरे से बढ़िया कोई मैनेजर है, सारा वर्ल्ड मैं चलाता हूं, मेरे पास आओ। तो ऐसा करने से ही कर्म पूजा बन जाता है। तो हम लोग का कर्मियों का फॉर्मूला क्या बना, कर्म प्लस पूजा, ये हमको बंधन से काट देगा। और जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, जो पूजा नहीं है, पूजा का मतलब क्या है, पूजा का मतलब क्या, पूजा का मतलब ये है कि हमारे इस कर्म से भगवान खुश होंगे, बस हम जो कर्म कर रहे हैं वही करेंगे, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वही कर्म करेंगे, भगवान ने कोई नया कर्म करने को नहीं कहा कि रोज सवेरे उठ के आधा घंटा तुम मेरी माला जपो, नहीं कहा कुछ, कि आप डॉक्टर हो तो नहीं आपको इंजीनियरिंग का काम करना है, ऐसा भी नहीं कहा, आप जो काम करते हो वही करते रहो, मगर उस काम के अंदर केवल याद रखो अगर मेरी पूजा करनी है तो उस काम को करने से भगवान खुश होंगे कि नहीं, बस इसको आप याद रखो, इतना करने से आपका काम हो जाएगा। मुक्त संग, मुक्त संग मतलब कर्म फल संग वर्जित, मतलब जब आप काम करते हो उस टाइम कर्म फल की चिंता नहीं करो। देखो हर कर्म कर्म फल देगा, फ्रूट ऑफ एक्शन आएगा, हमने जो भी काम किया फ्रूट ऑफ एक्शन जरूर आएगा, मगर जब काम कर रहे हैं उस टाइम में अगर आप फल की चिंता करोगे तो आप जो है यू आर नॉट पुटिंग 100% ऑफ योर माइंड इन दैट, बिकॉज सम पार्ट ऑफ योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तो कैसे हुआ फिर 100% नहीं होगा, तो करने के समय आप कर्म फल की चिंता नहीं करो, करने के पहले पूरी प्लानिंग कर लो, जो जो करना है, आपको 1 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, जो करना है कर लो, मगर उसके बाद में जब इंप्लीमेंट करते हो अपने प्लान को उस टाइम में फिर और नहीं सोचो, फिर आप पूरी तरह से कर्म करो, समाचरण अच्छी तरह से करो। उसके बाद भगवान कहते हैं 10वें श्लोक में हमने देखा था, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरो वाच प्रजापति, ये हमने पढ़ा था ना, चैंट किया था, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरो वाच प्रजापति। भगवान कहते हैं कि ये जो है यज्ञ का जो फैक्टर है वो हमने सब प्राणियों में डाला हुआ है, जन्म से आपके अंदर वो सेक्रीफाइस या त्याग है। देखो आप रस्ते रस्ते चलते हुए किसी फुटपाथ पर कोई आदमी गिर गया, आप उसको पहचानते भी नहीं, आप उसको हेल्प नहीं करना चाहते हो, उसको पकड़ के उठाते नहीं हो, यही तो त्याग है, ये तो हेल्प है, यही तो यज्ञ है। आप उसको पूछते हो कि मेरे को 2 रुपये दोगे कि नहीं दोगे, मैं तुमको हेल्प करता हूं नहीं तो नहीं करूंगा, बोलो पहले पैसे दोगे, नहीं ऐसा नहीं करते। तो यज्ञ भाव तो सबके अंदर है, सब प्राणियों के अंदर यज्ञ भाव दिया हुआ है, भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं कि त्याग भाव से तुम्हारी वृद्धि होगी, जितना तुम यज्ञ भाव से करोगे उससे वृद्धि होगी, और सेल्फिश एक्शन से कभी वृद्धि नहीं होगी। तो स्पिरिट ऑफ गिविंग शुड बी ऑलवेज देयर, सेक्रीफाइस हम देंगे, सहयज्ञ प्रजा शिष्वा। तो ये जो है यज्ञ भाव हमारे के अंदर जो है वो प्राकृतिक है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसको कहीं से लेके नहीं आना है हमको, इस ऑलरेडी विद अस। देखो हम प्रकृति पशु पक्षी सबको देख रहे हैं ना, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखो पृथ्वी फसल देती है, बादल पानी देते हैं, सूर्य प्रकाश देता है, किसके लिए करते हैं, वृक्ष हमको फल देते हैं, वो खुद फल खाते हैं नहीं खाते, बादल पानी देता है वो अपने पास रखता है नहीं, सब दे देता है। यज्ञ त्याग गिविंग 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 कंटिन्यूअसली, सूर्य ताप और प्रकाश देता है, अगर ये देना बंद कर दें जैसे हम करते हैं, हम सब सेल्फिश हैं यहां बैठे हुए, हम नहीं देते हैं, हमारी प्रकृति अगर सूर्य ले ले बादल ले ले नहीं पानी देंगे, चलो नहीं हीट और आपको लाइट देंगे हम, सूर्य बोलते नहीं देंगे जाओ, पृथ्वी कहेंगे नहीं फसल नहीं उगने देंगे, रहेगा ये संसार जगत चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये सब के सब देते हैं, एसो वस्तु इष्ट काम दुख, इस यज्ञ भाव से काम करने से वह काम दुख बन जाएगा, आपकी जो इच्छा होगी ना वो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप आनंद मिलेगा आपको, आप करके देखो आपको आनंद मिलेगा, अब बहुत आनंद मिलेगा। और इसको ऑस्पिशियस माना गया है, अब भगवान कहते हैं ऐसा करो, अगर आप भगवान की बात नहीं मानते हो, प्रजापति ने भी ऐसा कहा कि मैंने सारी सृष्टि इस हिसाब से की है, तुम अपनी उन्नति इस हिसाब से करो, त्याग करो, दूसरों के लिए काम करो, अगर हम नहीं मानते हैं उनकी बात तो ये पाप है, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा सीनियर मोस्ट हैं। अगर हम किसी सीनियर की बात नहीं मानते हैं तो क्या है, गलत काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमको बहुत दुख होता है, सुनो सोचो प्रजापति को कितना दुख होता होगा, उन्होंने कहा तुमको ऐसे काम करना है, यज्ञ भाव से करना है और हम नहीं करते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। अगर कोई कहे नहीं मेरे में यज्ञ भाव नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो शास्त्र भी कहता है कि सेल्फलेस स्पिरिट से काम करो, हमारे उपनिषद ऐसा कहते हैं, वर्क इज अबव सेल्फ, ऐसा हम जानते हैं, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। जैसे हर सामान खरीदने पर हमको गाइडलाइंस मिलती है कैसे कैसे क्या करना है, पैकिंग कैसे खोलनी हो तो भी लिखा रहता है, इधर से खोलो फिर इसको काटो या ऐसे करो फिर इसको ऐसे जोड़ दो तब आपकी चेयर बनेगी। हम लोग चेयर खरीद के लाए, ऐसी नहीं होती है चेयर, उसकी चार टांगे अलग होती है, सीट अलग होता है, बैक अलग होता है, फिर उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये स्क्रू यहां लगाओ ये स्क्रू वहां लगाओ ऐसे करो चेयर इंस्ट्रक्शन होता है। तो हमारा मैनुअल क्या है, हमारा मैनुअल वेद है, वेद हमारा मैनुअल है और उनका सारांश गीता है, तो गीता हमारा मैनुअल है, वेद हमारे मैनुअल हैं। अब भगवान यहां कहते हैं सृष्टि के आदिकाल में यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग प्रसव, प्रसव मीन्स उत्पत्ति, यानी वृद्धि लाभ करो, बढ़ो। यज्ञ भाव से अगर काम करोगे तो आपकी उन्नति होगी, आप बढ़ोगे। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामनाओं का देने वाला अर्थात इच्छित फल रूप नाना भोगों को देने वाला होगा, तो आपकी डिजायर फुलफिल होगी अगर आप ऐसे करोगे तो।
देवान् भावयतानेन
देवान् भावयतानेन
ते देवा भावयन्तु वः
ते देवा भावयन्तु वः
परस्परं भावयन्तः
परस्परं भावयन्तः
श्रेयः परमवाप्स्यथ
श्रेयः परमवाप्स्यथ
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।
भगवान कहते हैं देवान भावयत अनेन, देवान भावयत, भावयत का शंकराचार्य जी कहते हैं वर्धयत, वर्धयत मीन्स बढ़ाओ, उन्नति करो अपनी। कैसे करो? देवान अनेन, अनेन का मतलब यहां कहा यज्ञेन, जैसे यज्ञ की बात आपको हमने आगे कही है कि यज्ञ के रूप में अपने सब कर्म करो, बोले इस किस्म से आप देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवताओं के लिए पूजा करो। क्या होगा पूजा करके, क्या मिलेगा हमको पूजा से? ते देवा भावयन्तु वः, वो देवता आपके बारे में चिंता करेंगे, आपको बारिश देंगे, वृष्टि देंगे, पानी देंगे। पहले पूजा किसको करनी है, देवता को कि हमको? देवान भावयत अनेन, अनेन मतलब यज्ञ रूप से। हे मनुष्य, पहले तुम देवताओं की पूजा करो। हम मंदिर में जाके क्या करते हैं, पहले हम पूजा करते हैं ना, भगवान मेरे को ये चाहिए, ये कर दोगे तो फिर हम आएंगे 11 रुपए का प्रसाद देंगे। पहले पूजा करते हैं, अपनी प्रेयर रखते हैं वहां पर, ऐसा करो हमको ये चाहिए। भगवान जब खुश होकर दे देते हैं तो पहले प्रेयर किसको करना है, हमको करना है, फिर भगवान अपना ग्रेस देंगे, हमारी कामना पूर्ण करेंगे। ते देवा भावयन्तु वः, आपने पूजा की उसके बाद भगवान करेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण। परस्परम भावयन्त, इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते जाओ। देखो जब हम भगवान की पूजा करते तो उनकी भी उन्नति होती है, उनकी भी बढ़ोतरी होती है, और जब वो खुश होते हैं तो वो ऊपर से हमें बारिश देंगे। इंद्र की आपने पूजा की, इंद्र ने आपको बारिश दे दी। श्रेय परम अवाप्स्यथ, इससे परम श्रेय, परम श्रेय क्या होता है, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। देखो आगे जो बताया गया ना वही एक ही चीज है, आप अपने कर्म के साथ में पूजा को जोड़ो, जोड़ते जोड़ते करते करते मन शुद्ध होगा और आपको परम की प्राप्ति हो जाएगी। देखो एक तो इसका ट्रेडिशनल मीनिंग एक होता है, क्या ट्रेडिशनल मीनिंग है कि यज्ञ के बाद में, यज्ञ मतलब हवन करते हैं हम ना, यज्ञ का एक ट्रेडिशनल मीनिंग है हवन, अग्नि से हवन करके हम उसके अंदर ऑब्लेशंस देते हैं, आहुति डालते रहते हैं और एक एक मंत्र पढ़ते हैं कि ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके लिए है, आपके लिए है। तो आहुति क्या होती है अग्नि में, अग्नि क्या है, अग्नि इज ए कैरियर, जैसे आपका फेडेक्स है ना DHL, फास्ट कैरियर। अग्नि क्या है, वो इमीडिएटली उसको धुआं बना के ऊपर देवता के पास पहुंचा देती है, आपकी प्रेयर पहुंच गई, देवता खुश हो गए, उसने हमें याद किया, हमारे लिए आहुति डाली, अब आपकी जो इच्छा है उसके बाद वो पुण्य करेंगे, पूर्ण करेंगे। देखो आपने जितने भी मंदिर में आप गए हो ना, आप सब जगह देखोगे कि भगवान बराबर आपको आशीर्वाद रूप में खड़े मिलेंगे। एक हाथ ऐसे है, चलो अपनी एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन आपको देनी है पहले। अच्छा डांस के अंदर भी आपने देखा है ना, मुद्रा, मुद्रा में दिखाते हैं ना भगवान ऐसे। तो देवता क्या है यहां पर, बोले देवता यहां पर प्रिसाइडिंग डाइटीज हैं। अगर जगत ठीक चल रहा है, अगर जगत ठीक चल रहा है तो इसका मतलब भगवान के सारे डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं। और एक रूल है, वो नियम बने हुए हैं, सब नियम के हिसाब से होता है, हमारे साइंटिस्ट सूर्योदय सूर्यास्त बारिश कब होगी, हमने 4 बजे आज कंप्यूटर खोल के देखा 7 बजे बारिश है। हो गई 7 बजे बारिश, कैसे आपने कंप्यूटर इसको कैलकुलेट किया? क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये किस वेग से कितनी गति से ये बादल चल रहे हैं, कितनी देर में कहां पहुंचेंगे, कब ग्रहण लगेगा, क्योंकि आपको स्पीड सबकी पता है, सूर्य की स्पीड पता है, चंद्रमा की स्पीड पता है, सबकी स्पीड पता है, पृथ्वी की स्पीड पता है। इस वास्ते आप बता देते हो कि आज सूर्योदय इतने बजे, सूर्यास्त इतने बजे, 21 अगस्त को ग्रहण लगने वाला है। कैसे बताया? क्योंकि वहां पर एकदम नियम बने हुए हैं, एकदम सिस्टम, नियम बद्दी नहीं होते हैं, इस वास्ते आप बता पाते हो। तो ये एक ऑर्डर है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर देयर। एक घर में गुरुदेव गए मद्रास में एक भक्त के यहां, तो देख के जो है मतलब एवरीथिंग इन ऑर्डर, सब चीजें जगह जगह पर एकदम ठीक पड़ी हुई है। देखो ऐसे घर में रहना बड़ा मुश्किल है, सब चीजें एकदम यथास्थान पर। अब वो कहां रखें चप्पल, आप दूसरी जगह रखो तो गड़बड़ है, इधर उधर रख देने से सब चीज ऑर्डर में है। तो गुरुदेव सोचे आज हम आए हैं तो इस वास्ते सब ऑर्डर में रखा होगा। तो एक दिन फिर दूसरी बार जब गए तो बिना सूचना के पहुंच गए, विदाउट नोटिस। बोला नहीं ये तो पूरा एकदम व्यवस्थित ऑर्डर में है, वहां भी ऑर्डर है, भगवान के जितने भी डिपार्टमेंट है ना वहां सब भी ऑर्डर में है, चेंज नहीं होता है। अच्छा एक बार गुरुदेव दूसरे भक्त के यहां गए, वो सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, तो कहता है कि आप मत सोचिएगा कि बराबर ऐसा रहता है, कभी कभी इससे भी खराब अवस्था होती है। तो ऐसा भी होता है। तो जगत में एक ऑर्डर है, तो कोई ऑर्डर बदलता नहीं है। आपने देखा होगा कि अब गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद में फिर ऑटम आएगा, फिर विंटर होगा, स्प्रिंग होगा, ये साइकिल ठीक चलता रहता है। किस टाइम आम का पेड़ आपको आम देगा, निश्चित है एकदम। आम का पेड़ कभी आपको नींबू नहीं देगा, निश्चित है एकदम। नियम है ना, ऑर्डर है ना। तो जगत में सब जगह एकदम पक्का ऑर्डर है। अब प्रश्न आता है कि आप देवता की जब बात करते हो तो कितने देवता हैं? तो हम लोगों ने सुना है 33 करोड़ देवता हैं। करोड़ का एक वर्ड यूज करते हैं, 33 कोटि, कोटि कहते हैं ना, कोटि, 33 कोटि। देखो दोनों तरफ से ये ठीक बैठेगा। देखो हम आपको बताते हैं, 33 करोड़ इतने देवता हैं, होंगे। अच्छा आप देखो, अमेरिका के प्रेसिडेंट एक है, उसके नीचे फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, फिर डिफरेंट सेक्रेटरीज हैं, फिर उसके नीचे और डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट। और उसके बाद में आपके मोहल्ले के अंदर में एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 10 पुलिस होंगे, हैं, आपको लाइसेंस लेना होगा, उसका एक डिपार्टमेंट है, आपको सोशल सिक्योरिटी सर्विस, हम लेने गए थे तो आप खिड़की के बाहर खड़े हो और वो जो है पीछे, वो आपको प्रश्न करता है, यू विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू आंसर, एंड इफ ही इज सैटिस्फाइड ही विल गिव यू द नंबर, खत्म हो गया। वो कौन है? वो भी प्रेसिडिंग डेटी देवता है। वो भी देवता है। अब बताओ यूएस गवर्नमेंट में कितने देवता हैं? बताओ हमको कितने, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ऑल आर देवता। तो अगर हम कहें इतने बड़े विश्व को चलाने के लिए अगर 33 करोड़ उनके पास में हो सकते हैं, एक कंपनी में, अपनी कंपनी में देखो ना कितने देवता हैं उसमें, सब एक एक काम करते हैं ना, सबको एक एक अथॉरिटी दी हुई, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। उसी तरह इस इतने जगत को चलाने के लिए इतने देवता हैं। एक दूसरा भी उसका इंटरप्रिटेशन है, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं, ओनली 33। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु। कहता 12 आदित्य, 12 महीनों के आदित्य के 12 नाम हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, भगवान शिव के साथ में रिलेटेड रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, वसु मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट में क्या क्या आ गया, पृथ्वी आ गई, अग्नि आई, आया वायु, आया स्पेस, आया उसमें जल नहीं है, 8 वसु में जल नहीं है। फिर एक अंतरिक्ष है, इंटर स्पेस, एक स्पेस है और एक अंतरिक्ष है, सन मून एंड स्टार्स, 8 हो गए, 8 वसु। तैतीस कोटि। तो आप अगर इंद्र की पूजा करोगे आपको बारिश मिलेगी, आप सरस्वती की पूजा करोगे ज्ञान मिलेगा, लक्ष्मी की पूजा करोगे आपको धन मिलेगा, जिसकी जी पूजा करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अब कई लोगों को ये ट्रेडिशनल मीनिंग पसंद नहीं आता है, यज्ञ वाला आजकल लोग करते नहीं है, मगर दशरथ ने भी पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था तब उनको संतान हुई, होता है, मतलब यज्ञ के अंदर ऐसी शक्ति है जिसके कारण आपको फल मिलता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि क्या है देवता, बोले प्रोडक्टिव पोटेंशियल है नेचर में, नदी पहाड़ वायु पृथ्वी अग्नि सब में पावर है और सबके अपने अपने नियम हैं और उस नियम का पालन करना पूजा है, आप नियम का पालन करोगे पूजा है उसकी। जैसे आपको कृषि का एक नियम है, कृषि का नियम क्या है, उचित समय पर आपको बीज बोना होगा, उसके बाद उसमें खाद पानी समय समय पर देना होगा, वीड्स निकालने होंगे, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करनी होगी, नियम है। आप नियम उल्टा पलटा कर दो फसल नहीं मिलेगी आपको, फसल नहीं मिलेगी। तो नियम का पालन करना, जैसे ही आप नियम पालन करो पृथ्वी आपको देगी, नदी पहाड़ सब देने के लिए खड़े हुए हैं, मगर उनके नियम आप पालन करो। अब जैसे कृषि विश्वविद्यालय के अंदर में जाके बच्चे जो हैं कृषि के बारे में सीखते हैं, सो दे गेट अ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरी मिल गई। तो एक ही ऐसा ही एक कृषि का स्टूडेंट एक गया प्रैक्टिकल के लिए, गया एक जगह, वहाँ एक किसान था, वो अपने पेड़ को देख रहा था, सोच रहा था कि क्या किया जाए, पेड़ थोड़ा सूखा जा रहा है। तो अब वो लड़का नया पढ़ के आया था तो बोलता है ये पेड़ आपको 10 किलो आम नहीं देगा। बोले तुम ठीक कहते हो, कभी ये 10 किलो नहीं देगा क्योंकि ये नींबू का पेड़ है। प्रैक्टिकल नहीं है। देखो भूत भी देवता होते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर देखो मल्टीप्लाइंग पावर है, आप एक सीड डालो 1000 सीड बन जाएंगे, कितने फ्रूट्स हो जाएंगे, एक आम का एक सीड लगाओ फिर देखो कितने आम होते हैं, कितने सीड निकलते हैं उसमें से, मल्टीप्लाइंग पावर है पृथ्वी के अंदर। पानी के अंदर पावर है, हाइड्रोलिक पावर हम लोग बनाते हैं ना, हाइड्रोलिक से बिजली बनती है, उसके बाद वायु, विंड मिल आप देखते हो यहाँ पर है, कुछ दिखाई पड़ती है विंड मिल, उससे भी आपको देखो मिलता है, सूर्य के अंदर सोलर एनर्जी है, तो ये सब एनर्जी है। अब इनको अगर आप ठीक से उनके नियम पालन करोगे तो आपको देंगे, अब नियम नहीं पालन करोगे, अब वृक्ष चाहिए आप वृक्ष काट देते हो, क्यों, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, आप तो डेवलपमेंट, आप सोचते हो डेवलपमेंट कर रहे हैं मगर वो इको का बैलेंस आप गड़बड़ कर रहे हैं, ये आप नहीं देखते। यमुना के अंदर कलिया नाग था, कालिया नाग, उसने जब पानी को दूषित कर दिया, भगवान ने उसको निकाल दिया ना, क्लीन कर दिया। कहते हैं हमने सुना नहीं है बॉम्बे में कोई मीठी नदी है सूख गई है, हाँ ऐसा कोई है मीठी नदी सूख गई, अब वो चेष्टा कर रहे हैं सरकार हरी क्रांति उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। हम लोग उस दिन शिकागो में गए थे वो आर्किटेक्चर टूर के लिए, तो बताता था कि ये जो आप देख रहे हो ये नदी, ये बहुत गंदी थी, शिकागो रिवर, बोले जितने भी सब गंदे सब इसके अंदर केमिकल्स वगैरह सब इसमें आते थे, अब तो दोनों तरफ अच्छे अच्छे मकान बन गए ना। बोले एक समय में ये नाला था, नाला गटर था, अब उन्होंने सब बंद कर दिया, अब वो साफ सुथरा हो गया। हमारे इंडिया में भी भगवान ये प्रधानमंत्री जी गंगा साफ करेंगे, तो हमारे गुरुदेव कहते थे जिसके कारण गंगा पोल्यूट हो रही है उसको बंद कर दो, अपने आप साफ हो जाएगी, तुमको पैसे नहीं खर्च करने हैं, उसमें गंदगी मत डालो, ड्रेनेज सिस्टम जितना है उसको ब्लॉक करो, केमिकल जितने फैक्ट्री डाल रहे हैं उसको बंद कर दो, तो पानी बरसात से जो आएगा नेक्स्ट वाला बरसात वाला पानी साफ होगा। सिंपल काम है। आप सोचते हो कि ये कैसे संभव है, ऐसे कैसे होगा, संभव है। देखो एक बार जो है असुर लोग सोच रहे थे कि भगवान विष्णु जो है ना देवताओं का पक्ष ज्यादा लेते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। असुर मतलब असुर मीन्स जो प्राणों में रमता है, जो सेंस ऑब्जेक्ट में रमता है, वो सब असुर हैं। उस डिफिनीशन के हिसाब से हम सब तो असुर लोग कहते हैं, देवताओं का भगवान विष्णु सोचते हैं तो मैं क्या करूं, देवता लोग मेरी पूजा करते हैं, मैंने को तो उनको ब्लेस करना ही होगा, जो पूजा करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने के लिए उन्होंने कहा चलो एक पार्टी रखते हैं, असुर को भी बुलाया, देवताओं को बुलाया, सब आ जाओ। असुर लोग खुश हो गए बहुत, तो उनको ले गए अपना डाइनिंग हॉल के अंदर में, वहां बफे लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है आप लोग देखो ये असुर का सेक्शन है और उस तरफ में पार्टीशन के बगल में सेम थिंग है वो देवताओं का सेक्शन है, ये आप लोग दोनों एक साथ रहोगे तभी झगड़ा लग जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, आप ऐसा समझो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है। उन्होंने कहा भाई चलो पहले प्रार्थना करो, तो देवता ने फटाफट ब्रह्मा, उनको तो याद है ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी ब्रह्मग्नो ब्रह्मना उत्तम, असुर लोगों ने भी रिपीट किया। उसके बाद भगवान ने कहा कि भोजन पड़ा हुआ है मगर एक कंडीशन है खाने की, कि आप अपना हाथ मोड़ के मुंह में नहीं डाल सकते, ये हाथ यहां से नहीं मुड़ेगा। अब असुर बोले देखो ये विष्णु जो है बहुत चालाक आदमी है, देखो देवताओं को फेवर कर रहा है, हम लोग जाके ना खा पाए इस वास्ते ऐसी व्यवस्था की है। और उधर जो है देवता लोग उनके बृहस्पति गुरु थे, बोले बोले अग्नि तुम वायु को खिलाओ। अब अग्नि लेके वायु को खिला रहा है, वायु तुम उसको इंद्र को खिलाओ, इंद्र तुम उसको खिलाओ, तो एक दूसरे को खिलाते रहे, तो दे एंजॉय, पार्टी खत्म हुई। तो असुर आके देखते हम लोग तो खाए बिना रह गए, और ये देखो परस्पर खाते रहे, ये तो हंस रहे खेल रहे। तो आप कहने का मतलब ये है कि सेल्फलेस एक्टिविटी से उन्नति होती है, ये इस कहानी का निष्कर्ष है। एक दूसरे को खिला रहे थे देवता, तो सेल्फलेस एक्टिविटी हो रही थी। अगर हम आपसे कहें आप इनको खिलाओ, तो पहले पूछेंगे हाथ साफ किया, आप बोलेंगे रोटी खाओ, बोले मेरे को चटनी खानी है, हम कहेंगे ना रोटी क्यों देते हो, वहां पुलाव है पुलाव दो वहां को पहले। मगर देवता लोग ऐसे नहीं किए। तो इसमें देखने की क्या चीज है, सेल्फलेसनेस है इसमें, एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। इस सारे जगत के अंदर वो बुफे चल रहा है, जैसा वो देवता के अंदर बुफे चल रहा था ना वैसा चल रहा है, मगर इस बुफे के अंदर में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, एक ही चीज है। आप देख रहे हो ना इस दुनिया में गरीब गरीब होता जाता है। गलती कहां हो रही है, एक दूसरे के लिए हम करते नहीं है, एक दूसरे के लिए करते नहीं है। एक बार दो कुत्ते मिले, एक चाइना से आया था और एक तो यहाँ का डेमोक्रेट का था, डेमोक्रेसी से आया हुआ था। तो चाइना वाला कुत्ता बोलता है कि हमको तुम्हारे देश में जाना। बोलता क्यों, तुम तो हट्टे कट्टे हो। बोला हट्टे कट्टे तो हैं बट आई डोंट हैव राइट टू बार्क, फ्रीडम नहीं है, बोलने की फ्रीडम नहीं है, तुम्हारे यहाँ फ्रीडम है, हम तुम्हारे कंट्री में जाना चाहते हैं। देखो ये कम्युनिज्म वहां पर है, कुछ आदमियों के पास में पावर है, बाकी को फ्रीडम नहीं है। मगर हमारा ये स्पिरिचुअल सोशलिज्म कैसा है, सबके लिए है, सबके लिए है, सब उसके अंदर में बढ़ेंगे। अगर सभी एक दूसरे की सहायता करें तो श्रेय होगा। कैसे श्रेय होगा? अब देखो भाई, रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से आप देवताओं की पूजा करोगे, देवता आपको ब्लेस करेंगे, देखो आपकी प्रॉस्पेरिटी हो रही है कि नहीं। आप साइंस के स्टैंड पॉइंट से करो, भूत की पूजा करो, भूत आपको एनर्जी देंगे, आप उनके नियमों का पालन करो, वो आपको एनर्जी देंगे। सोशल स्टैंड पॉइंट से सोसाइटी में जितने भी मेंबर हैं, अगर वो एक दूसरे की सहायता करने लगे, कोऑपरेटिव एंडेवर अगर हो, तो बताओ बढ़ेगा कि नहीं समाज, विकसित होगा कि नहीं, विकास होगा। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से आप देखो, अगर जो वेल्थ है वो अगर हम ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करें, सबको अगर मिले, तो सबका विकास होगा। इकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखिए, हम लोग जो है हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है सूर्य भगवान की पूजा करो, उनको वाटर ऑफर करो, पानी उनको ऑफर दो, तो दे विल ब्लेस यू, तो इससे आपका विकास होगा। मगर हम क्या करते हैं, हम अपने स्वाद के लिए कई प्राणियों को मार देते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो केवल मुंह के टेस्ट के लिए हम बहुत प्राणियों को मारते हैं। तो इससे क्या होता है, बोला संतुलन बिगड़ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ होगा। सब प्राणियों का काम है इस दुनिया में, भगवान ने जितने भी बनाए हुए हैं प्राणी, सबका काम है, अब वो अपना काम करते हैं, मगर हम उसका संतुलन गड़बड़ कर देते हैं। एक बार एक मुर्गी ने एक सुअर से प्यार कर लिया, मुर्गी और सुअर का प्यार, मैं एक घंटे में मर गए। मुर्गी को स्वाइन फ्लू हो गया और सुअर को बर्ड फ्लू हो गया, दोनों ही खत्म। सब कुछ हो रहा है क्योंकि इस श्लोक की प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। देखो दुनिया में सब चल रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, केवल मनुष्य एक ऐसा है जो अपना काम नहीं करता है, सब कर रहे हैं, हम केवल लेते हैं लेते हैं लेते हैं, देते नहीं हैं। यहां से आपको पुकारना है, प्रैक्टिकल लेना है, दुनिया को देख के सीखो भगवान क्या कर रहे हैं, लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो तो आपको हॉरिबल स्टोरी बहुत मिलेगी, कैसे लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सब जगह यही हाल है। अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा, श्रेय मिलेगा, ये पृथ्वी स्वर्ग बनेगी। जैसे भगवान कहते हैं अगर हम उसको फॉलो करें तो हमको यहां श्रेय, यहीं स्वर्ग मिल जाएगा। और अगर आप बोलोगे मृत्यु के बाद मोक्ष है, दोनों ही आपको मिलेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, हम सोसाइटी से अलग नहीं रह सकते, हमको यहीं रहना होगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मगर हम सोसाइटी के अंदर लव एंड हार्मोनी के साथ रह सकते हैं, प्रेम के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम त्याग कर सकते हैं, फिर क्या होगा, तो सोसाइटी बनी रहेगी। आपकी फैमिली भी सोसाइटी है, हम अपनी फैमिली का अगर इस तरह से देखें जैसा भगवान कहते हैं, फैमिली की उन्नति होगी। सोसाइटी को देखें, सोसाइटी की उन्नति होगी। कंपनी को अंदर ये रूल लगा दीजिए, कंपनी की उन्नति होगी। तो श्रेय इसी में है, परस्परम भावयंत परस्परम, एक दूसरे के लिए आप कीजिए तब आपका जो है विकास होगा, वृद्धि होगी। तो भगवान के नियमों के बारे में आपको पता लग रहा है, नियम अच्छे हैं, साइंस समझ में आ रहा है, विज्ञान क्या है उसके पीछे। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।